पद संख्या 16। ससन परस खसु अंबर रे देखल धनि दे, नव जलधर तर चमकाए रे जनि बिजुरि रे, आज देखल धनि जईत रे मोहि उपजल रंग, कनक लता जनि संचर रे महि निर अवलंब, तापुन अपूर्व देख रे कुछ जुग अरबिंद, बिगसति नहि कछु कारण रे सोझा मुख चंद, विद्यापति कवि गाओल रे रस बुझाए रस मंत, देव सिंह नृप नागर रे हसने देवी कंत। संदर्भ: नायक ने नायिका को मार्ग में जाते हुए देखा, वह उसकी लुभावनी सूरत पर आसक्त हो गया। अपनी इसी मना आसक्ति का वर्णन वह अपने अंतरंग सखा से करता हुआ कहता है, जब पवन स्पर्श से नायिका का वस्त्र खिसक गया तब मैंने उस रमणी के शरीर को देखा। देखने पर उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो नए बादलों के मध्य विद्युत रेखा का संचार हो रहा हो। यहाँ नायिका के वस्त्र का रंग बादल के वर्ण का है और उसके देह को बिजली के समान दिखाना कवि को अभिष्ट है। आज उस रमणी को जाती हुई देखकर मुझमें प्रेमोत्पत्ति हुई। मार्ग में जाती हुई वह बाला ऐसी लग रही थी जैसे सोने की लता निरालंब हो अग्रसर हो रही हो। तदुपरांत मैंने देखा कि उसके दोनों उरोज कमल की भांति सुंदर हैं। उन उरोजों के विकसित न होने का कारण था कि उनके सामने ही मुखचंद्र खिल रहा था। कवि और विद्यापति गाते हैं कि कोई रसज्ञ इसको समझ सकता है, हासिनी देवी के स्वामी राजा देवी सिंह इस विषय के मर्मज्ञ हैं। विशेष: प्रथम दर्शन में ही इसमें प्रेम होना दिखाया गया है। नायिका का वस्त्र बादल के रंग का है, इस कारण उसे नवीन बादल के समान कहा गया है, और उसके शरीर का रंग गोरा है इसलिए उसकी तुलना विद्युत रेखा से की गई है। अलंकार: उत्प्रेक्षा अलंकार। नव जलधर तर चमकाय रे जनु बिजुरि रे। उत्प्रेक्षा अलंकार: कनक लता जनि संचर रे महि निर अलवलंब। रूपक अलंकार: उच्च जुग अरबिंद। संबंधातिशयोक्ति अलंकार: विगसित नहि कछु कारण रे सोझा मुख चंद। भावसादृश्य: महाकवि प्रसाद ने श्रद्धा के रूप चित्रण में एक स्थल पर ऐसे चित्रांकन से काम लिया है। नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। पद संख्या 17। मृगमद पंक अलका मुखजरु करत तिलका, निपुण पुनिम के चंदा तिलके होइत गए मंदा, सहजह सुंदर बड़ी राही की कर भी अधिक पसाही, उजर नयन नलिना काजर ने कर मलिना, दुधक धोयल भमरा मस बुड़ी जाए समरा, पीन पयोधर गोरा उलटत कनक कटोरा, चंदन धवल न करु हिमे बुड़ी जायत सुमेरु, भनै विद्यापति कवौ कतै तिमिरि जहाँ रवि। संदर्भ: दूती सखी राधा के साथ सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि प्रसाधन करने से तो उसका सहज सौंदर्य छिप जाएगा, अतः वह इसी रूप में कृष्ण के पास चले। व्याख्या: तेरे मुख पर मृगमद पंख से सुगंधित अलक ऐसी लगती है मानो वह मुख का तिलक कर रही है। अली तेरा मुख पूर्णिमा का निष्कलंक चंद्रमा है, तिलक लगाने से वह कलंकी हो जाता है। हे राधे, तू तो सहज ही सुंदर है, अतः मुझे अधिक प्रसाधन करके क्या करना है। अधिक प्रसाधन से तो तेरा सहज सौंदर्य दब जाएगा। तेरे कमल नेत्र जो सहज प्रकाश करते हैं काजल लगाकर उनको मिलन न बना, मलिन न कर। तेरे पुष्ट पयोधर गोरे हैं और उल्टा करने से सोने के कटोरे बन जाते हैं। जिस प्रकार भ्रमर दूध से धोने पर स्याही में डूब कर काले रंग का हो जाता है, उसी प्रकार धवल चंदन का लेप करने से तेरे कनक कटोरा कुछ उसमें डूब कर काले रंग के हो जाएंगे। विद्यापति का विवरण करते हैं कि जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ अंधकार का क्या काम। भाव यह है कि तेरा सहज सौंदर्य ही सारे अंधकार को दूर करने वाला है। काव्य सौंदर्य: विद्यापति प्रसाधनों और आभूषणों के स्थान पर सहज सौंदर्य को ही महत्व देते हैं। प्रसाधन तो शरीर की सहज छवि को मलिन कर देते हैं, बिहारी ने भी कहा है। मलिन करत आछी छबिहि कही आवत कही हेत, दर्पण के से मोरचे अंग दिखाई देत। दुति सखी राधा के सहज सौंदर्य की प्रशंसा कर कृष्ण से मिलने के लिए प्रेरित कर रही है। अलंकार मृगमद तिलका में उत्प्रेक्षा, निपुण चंदा में व्यतिरेक, नयन नलिला में रूपक, पीन पयोधर कटोरा में उत्प्रेक्षा, सुमेरु में रूपकातिशोक्ति। पद संख्या 18। सहज ही आनन सुंदर रे भाव सुरेखल आँखी, पंकज मधु पीबी मधुकर उड़े पसारे पाखी, ततही धाऊल दुहु लोचन रे जतहि गेल बर नारी, आशा लुबुधन तेजय रे कृपनक पाछ बिखारी, इंगित नयन तरंगित देखल बाम भौ भेल भंग, तखन जानल तेसर रे गुपुत मनोभव रंग, चंदन चरचु पयोधर ग्रिम गज मुक्ताहार, भस्मे भरल जनि शंकर सिर सिर सरि जलधार, वाम चरण अगुसारल दाहिन तेजैत लाच, तखन बदन सर पूरल गति गंजय गजराज, आज जाइत पत देखल रे रूप रहल मन लागि, देखन सब गुण गौरव रे धीरज गेल भाग, रूप लागि मन धाउल रे कुछ कंचन गिरि साधि, ते अपराधे मनोभव रे ततहि धैल जनि बाँधि, विद्यापति कवि गाउल रे रस बुझ रस मंता, रूप नारायण नागर रे लखिमा देविक सुकंता। संदर्भ नायक नायिका के सौंदर्य का अवलोकन कर उस पर आसक्त हो जाता है, इसी का वर्णन वह अपने अंतरंग सखा या नायिका के अंतरंगिनी सखी से करता हुआ कहता है। उस बाला का मुख स्वभावतः ही सुंदर है, उस पर उसकी आँखें और भौहें तो भलीभांति चित्र की हुई है, उनको देखकर ऐसा लगता है मानो कमल रस को पीकर भौंरा पंख फैलाकर उड़ने के लिए उद्यत है। वह रमणी इधर जिधर जाती है उधर ही उधर मेरे नेत्र उसके पीछे पीछे ठीक वैसे ही दौड़ पड़ते हैं जैसे किसी कृपण व्यक्ति के पीछे आशा लुप्त भिखारी दौड़ लगाता है, उसका पीछा कतई नहीं छोड़ता चाहे उसे उससे कुछ मिले अथवा नहीं। चंचल नेत्र के संकेत और बाएं भौं की भंगिमा से उसने जो गुप्त अभिलाषा व्यक्त की तत्क्षण उसकी ऐसी चेष्टा को कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जान सका। उसके पयोधर चंदन चर्चित थे और गले में गजमोतियों की माला पड़ी हुई थी। उसका यह रूप ऐसा लग रहा था मानो शंकर ने भस्म रमा रखी हो और उनके सिर पर गंगा की धारा प्रवाहित हो रही हो। वह जब चली तो अपना बायां पैर सबसे पहले आगे बढ़ाया और तत्पश्चात जब दाहिने पैर को चलने के लिए उठाया तो लज्जा ने उसे घेर लिया। ऐसे शुभ अवसर का लाभ उठाकर काम ने अपना बाण चलाया। वह बाला अपनी सुंदर गति से गजराज की चाल को भी मात देने वाली जान पड़ी। इस तरह आज उसे मैंने मार्ग में जाते हुए देख लिया। उसका स्वरूप तो मेरे तन में हमेशा के लिए बस गया है। उसके सौंदर्य का अवलोकन कर इतना प्रभावित हुआ कि मेरा गुण गर्व और धैर्य सब भाग गए। अभिप्राय यह है कि नायिका को देखकर नायक प्रेम विवल हो गया। रूप लोभ में आकर मेरा मन उन सोने के कुचों की ओर दौड़ा, जिसके कारण यानी कामदेव ने उसको वहीं बांध दिया। कवि विद्यापति गाते हैं कि इस रस को जानने वाले सहृदय और असज्ञ जन ही हैं। लक्ष्मा देवी के प्रति रूप नारायण राजा शिव सिंह इस रस के मर्म को समझने वाले हैं। विशेष विद्यापति द्वारा वर्णित स्तन वर्णनों को देखने पर यह स्पष्ट ज्ञान पड़ता है कि उन्हें इसका वर्णन प्रायः करना बड़ा प्रिय लगता है, इसीलिए वे इसके अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। पुरुषों में दायां और स्वयं बायां अंग प्रधान माना जाता है। व्यवहार में यह देखा गया है कि चलने में पुरुष दाहिना और औरतें बायां पैर सर्वप्रथम उठाती हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए विद्यापति ने वाम चरण अगुसारल रे जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। बायां पैर के उठ जाने पर नायिका ने जब तक दाहिना पैर उठाना चाहा तब तक उसे उस बात की स्पष्ट अनुभूति हुई कि कोई उसे ऐसा करते हुए देख न लिया। फलस्वरूप वह लज्जा से भर गई, इसलिए उसने दाहिने पैर को नहीं उठाया। दाहिना तेजई तलाज में इसी भाव की व्यंजना की गई है। अलंकार गम्योत्प्रेक्षा अलंकार निम्नलिखित पद्यांश में पाया जाता। सहज ही आनन सुंदर रे भौ सुरेखल आँख पंकज मधु पीवी मधुकर रे उड़े पसारल पाँख। अर्थांतर न्यास अलंकार को निम्नांकित पंक्तियों में देखा जा सकता है। तत ही धाउल दुह लोचन रे जत ही गेल बर नारी हासा लुबुधन तेजय रे कृपनक पांच भिखारी। निम्नांकित पदांश में वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है। चंदन चर चुपयोधर रे ग्रिम गज मुक्ताहार भसम भरल जन शंकर रे सिर सुर सर जलधर। मानवीकरण अलंकार तेखन सब गुण गौरव रे सब धैर्य गिल भागे संबंधातिशयोक्ति अलंकार। रूप लाग मन धाउल रे कुछ कंचन गिरि साधि ते अपराधे मनोभव रे तथि धैल जन बाध। पद संख्या 19। सुधा मुखी को भी निर्मल बाला अपरूप रूप मनोभय अमंगल त्रिभुवन विजयी माला सुंदर बदन चारु अरुलोचन काजर रंजित भीला कनक कमल माझे काल मुंचगिनी श्रीयुत खंजन खेला नाभि विवर सयलोम लतावलि भुजगि निवास यासा नासा खगपति चंचु भरम भय कुच गिरि संधि निवासा तिन वान मदन जितल तिन भुवने अवधि रहल द्विवाने विधि बड़ल दारुन बधिते रसिक जन सौंपल तुहारी नयाने भने विद्यापति सुनवर युवती इह रस को पय जान राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिमा देवी परनाम मान। संदर्भ नायिका के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन उसकी सखी अदिति करती हुई कहती है, किस विधाता ने इस बालक की रचना की है। इसका स्वरूप तो उसकी सारी सृष्टि से एकदम अलग थलग अथवा विलक्षण है। उस नायिका का विशिष्ट स्वरूप कामदेव की कल्याण कामना करने वाली त्रिभुवन विजयनी माला के समान है। कामदेव ने तीनों लोकों को अपने वश में इस सुंदरी के माध्यम से ही कर रखा है। उसके सुंदर मुख में काजल कलित नेत्रों को स्थित देखकर ऐसा लगता है मानव स्वर्ण कमल पर काल सर्पिणी क्रीड़ा कर रही हो अथवा दो खंजन खेल रहे हों। रोमावली जो नाभि की ओर से निकलकर ऊपर की ओर जा रही है देखने पर ऐसी प्रतीत होती है जैसे विवर से निकलकर सर्पिणी निश्वास वायु का सेवन करने चली हो, किंतु रोमावली रूपी सर्पिणी आगे न बढ़ सकी क्योंकि उसे उस बाला की नाक में गरुण चोंच का भ्रम हो गया। परिणामतः वह भयभीत हो स्तन रूप पर्वत के संधि स्थल में प्रविष्ट हो गई। सर्प जिस तरह गरुण से भयभीत होकर पर्वत संधि में छिप जाता है उसी प्रकार रोमावली भी कुछ गिरी संधि में समा गई। कामदेव अपने पांच बाणों के लिए परंपरा से प्रसिद्ध है। उसने उन पांचों में से तीन बाणों का संधान कर तीनों लोकों को अपना वशवर्ती बना लिया। शेष रहे दो बाण, उन दोनों का प्रयोग उसने रसिकों का वध करने के हेतु बाला के दो नेत्रों को सौंप दिया। देखो विधाता भी कितने निर्मम एवं निष्ठुर है। कवि विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ सुंदरी सुन, इस रस रीत को कोई कोई ही जानता है। नारायण रूप लक्ष्मी देवी के पति राजा शिव सिंह इस रस को जानते हैं। विशेष नारी के बाह्य सौंदर्य का वर्णन करते समय विद्यापति बहुत सतर्क सावधान एवं सजग दिखाई पड़ते हैं। यथा इस पद के वर्णन में कवि ने इस बात का पूरा ध्यान दिया है कि नारी की नाभि से उद्भुत रोमावली त्रिवली के ऊपर न जा सके क्योंकि केवल पुरुषों के वक्षस्थल रोमों से शोभित होते हैं नारियों के नहीं। इसीलिए कवि ने बड़े कौशल से कहकर उक्त आशय का समाधान प्रस्तुत किया है। नासा खगपति चंच भर में कर कुछ गिरि संधि निवासा, अर्थात नाभि से निकली हुई रोम राशि रूपी सर्पणी को नायिका की नासिका को देखकर गुण की चोंच का डर हो गया। इस कारण वह आगे न जाकर कुछ पर्वतों के बीच विलुप्त हो गई। कामदेव के पांच बाण हैं, स्तंभन या द्रवण, शोषण, तापन, मोहन, उन्मादन। एक के मतानुसार आकर्षण, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, मारण एवं दूसरे के अनुसार अरविंद, अशोक, आम्र एवं मल्लिक का निरुत्पल संजक पांच बाण है। अलंकार रूपकातिशयोक्ति अलंकार। अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। वस्तुत प्रेक्षा अलंकार कनक कमल पर काल भुजंगिनी संग द्वि खंजन खेला। संबंधातिशयोक्ति अलंकार तिन बाण मदन तेजल तिन भुवने अवधि रहल द्वि बाने। विधि बड़ु दारुण बधे रसिक जन सोपल तोहर नयाने। रूपक अलंकार कुछ गिरि संधि निवासा। नायिका नव यौवना मुग्धा नायिका। भाषा दृश्य जैसी ने पद्मावती के नक्षिक का जो वर्णन किया है उसमें इसकी रोमावली वर्णन की स्थिति बहुत कुछ ऐसी ही है, फिर भी विद्यापति जैसी मार्मिकता उसमें नहीं है। साम भुवंगिनी रोमावली नाभि निकसि कम्बल कह चली। आय दुओ नारंग बीच भई देख मयूर ठमक रह गई। बिल्कुल इसी परंपरा में सूर की पंक्ति देखिए। नाभि परस ले रस रोमावली कुछ जुग बीच चली। मन हम विवरते उरग रिग्यो तक गिरी संधि थली। बाला के दो नेत्र क्या है, मानो काम दो ऐसे बाण हैं जिससे रसिक जनों का खून होता है। अवधि रहल द्वि बाणे तोहर नयाने की तुलना हम निम्नोक्त दोहे से कर सकते हैं। खेलन सिखय अली भरे चतुर अहेरी मार। कानन चारि नयन मृग नागर नर निशिकार। पद संख्या 20। माधव जैत तिखवि पथरामा रौड़ासन सख तातक वाहन दासम गति अभिरामा। दक्ष सुताचारिम पति भगने तनय धरणि समरूपे। सिरुपति अरिदुहिता पति वैरी ते भरि भेलि अनूपे। अदिति तनय वैरी गुरुचारिम दासम आवत कांति। कुंभ तनय तसु असन तनय तसु कोंख पिसाउल पाति। नंद घरणि तनया तसु वाहन दासम माचक छीनी। याम देवनु पयिता पति प्रिय फल उरज अनल जिम जोमी। बने विद्यापति सुनवर जौवती अपूर्व रूपक रंगे। रावण अरिपतनी तारक तब तासह पावि संगे। संदर्भ तुति सखी नायक कृष्ण से नायिका राधा के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन कर रही है। व्याख्या हे माधव, आज पथ में जाते हुए राधा को देखा, वह रावत की तरह गति वाली गजगामिनी है। वह रति के समान स्वरूपा है। कामदेव ने उसकी छवि बढ़ाने में अनुपम सहायता की है। चंद्रमा के समान उसकी मुख कांति है। वह वक्षस्थल पर मुक्ताओं का हार धारण किए हुए है। उसकी कटि सिंह की कटी के समान क्षीण है और शिव के प्रिय फल बिल्व के समान उसके कुछ सुशोभित हैं। सखी कृष्ण को संबोधित करती हुई कहती है कि वह अद्भुत रूप रंग वाली अद्भुति होती है। सीता के पिता जनक की तरह तब साधना से ही वह प्राप्त हो सकती है। उनको चक्र समझकर उनके भय से राहु दूर से छिपकर उसके मुख चंद्र की शोभा देख रहा है, अर्थात उसकी वेणी बधी हुई है। वेणी के रूप में राहु दूर से छिपकर नायिका के मुख छवि देख रहा है। पद संख्या 23। सरस वसंत समय भल पावल दक्षिण पवन बहु धीरे। सपनहु रूप वचन एक भाखी मुखसो दुरी करु चीरे। तोहर बदन सन चान वथि नहीं जइयो जतन बिह देला। कै बेरि काटि मनाओल नौकय तैय तुलित नहीं भेला। लोचन तुल कमल नहीं भय सक से जग के नहीं जाने। से फेरि जाय नुकायल जल भय पंकज निज अपमाने। बने विद्यापति सुनवर यौवती ई सब लक्ष्मी समाने। राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिमा दे रमाने। संदर्भ नायिका का स्वप्न में प्रीतम से मिलन हुआ। वह मिलन के भावोल्लास का वर्णन करती हुई सखी से कहती है, हे सखी, वसंत ऋतु के मनोहर समय की सुंदर रात्रि थी। मलयांडिल मंद मंद गति से बह रही थी। ऐसे समय में किसी ने मुझे स्वप्न में आकर एक बात कही कि हे सुंदरी, तुम अपने मुख पर से वस्त्र हटा लो। तुम्हारे मुख की सुंदरता की समता चंद्रमा नहीं कर सकता। विधाता ने एक बार कांट छाक कर और संवार कर चंद्रमा का निर्माण किया, फिर भी वह तुम्हारे मुख के समान सुंदर न हो सका। संसार में कौन यह बात नहीं जानता कि कमल तुम्हारे नेत्रों की समता में नहीं ठहर सकता। अपने इस पराजय से लज्जित होकर वह इसी कारण जल तथा कीचड़ के भीतर छिपा रहता है। विद्यापति कहते हैं कि हे ज्येष्ठ सुंदरी, ये सब गुण तेरे लक्ष्मी के समान है, अर्थात तू साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी मादेवी के स्वामी रूप नारायण शिव सिंह यह सब कुछ जानते हैं। विशेष वसंत के मादक वातावरण में नायिका के भावलास का सुंदर वर्णन है। अलंकार उपमेयों के सामने उपमानों का पराजित होना वर्णित होने से संपूर्ण पद में प्रतीत है। पद संख्या 26। विरह व्याकुल मुकुल तरुतर बेखर नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सय सखी ढरे नीर अपार रे, बेखिल मलयज पंक मृगमद तामरस घनसार रे, निज पानि पल्लव मोदी लोचन धरनि पड़ असभार रे, पहे मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, जन प्रलय कालक प्रबल पापक दहे सुन शरीर रे, अधिक बेपथ टूटि पड़ खीति मसृण मुकुता माल रे, अनिल तरल तमाल तरुबर मंच सुमनल माल रे, मान मन तज सुंदरी चलु जहे राय रसिक सुजान रे, स्तुति सुखद अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। संदर्भ: सखी का कथन राधा के प्रति है। वो कृष्ण की आकुलता का वर्णन कर राधा से मान छोड़कर उनसे मिलने के लिए प्रेरित करती है। व्याख्या: हे सुंदरी राधे, कृष्ण तुम्हारे वियोग में बोलशिक वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके कमल के समान नेत्रों से अपार अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। वे घिसे हुए चंदन कस्तूरी नील कमल और कपूर को देखकर तुम्हारे विरह से अतिशय आकुल हो जाते हैं। अपने सुकोमल हाथों से नेत्र बंद कर बार बार पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनको अपनी संभार नहीं रहती। वहाँ जो शीतल मंद सुगंधित मलयानिल बहती है वह भी उनको नहीं सुहाती। वो तुम्हारे बिना शून्यता का भाव करते हैं। शीतल मंद सुगंधित मलयानिल प्रलय काल की भीषण अग्नि के समान उनको सजलाती है। तुम्हारे वियोग में रह रहकर उनके शरीर में इतना अधिक कंप होता है कि उनकी चमकदार मुक्तामाला टूट कर पृथ्वी पर गिर पड़ती है। वैसी लग रही थी मानो वायु से आंदोलित होकर तमाल वृक्ष से उसके पुष्प समूह झड़ गए हैं। अतः हे सुंदरी, तू मान को छोड़कर वहाँ चल, जहाँ रसिक सुजान श्री कृष्ण हैं। कवि विद्यापति कहते हैं कि कानों को सुदाई अति सरस दंडक छंद में मैंने इस रस का वर्णन किया है। विशेष कृष्ण के विरह के रूप में जहाँ नायक पक्षी विरह का दर्शन है राधा ने मान किया है। भाव साम्य: बहति मलय समीरे मदन मुपनिधाय, स्फटिक कुसुम ने करे विरह हृदय दलनाय, तब विरहे वनमाल सखी सीधते। गीत गोविंद। अलंकार: विरह व्याकुल बकुल में ब वर्ण के एक बार से अधिक आवृत्ति होने पर प्रत्यानुपरास नील नीरज नयन में उपमा पान पल्लव में रूपक पीखीरे में अतिशोक्ति बहे शरीर रे में उत्प्रेक्षा अधिक लाल रे में उत्प्रेक्षा पेख मलय शरीर में प्राकृतिक वस्तुओं के वेग के उद्दीपन के रूप में देखा गया है। पद संख्या 51। की हम साझक एक सरितारा पादव चौठिक ससे, इति दुह कौल मोर आनन जे पहु हे रही न हसे, साय साय कह 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 कानु कपट कह करह जनों की मोरा भील अपराधे, नमोय कहो तू अनुगनि चुकली हूँ बचन न बोलल मंदा, साम समाज पेव अनुरंजिय कुमुदनि मन्यधि चंदा, बने विद्यापति सुनबर जौवति मेदिनी मदन समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मा देवी रमाने। संदर्भ: श्री कृष्ण ने राय का राधा से मान किया। राधा अपने को निर्दोष बताकर सखी श्री कृष्ण को मना लाने के लिए उन्हें विनय करती है। वह विरह दशा को पहुंच जाते हैं। व्याख्या: हे सखी, क्या मैं संध्या काल को अकेली तारा हूँ जिसे लोग देखना नहीं चाहते, अथवा भद्रमास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा हूँ जिसे देखने से कलंक लगता है? हे सखी, बतलाओ तो सही कि मैं इन दोनों में से कौन हूँ जो प्रीतम मेरे मुख को हंस कर नहीं देखते। हे सखी, मेरी ओर से कृष्ण से कहना कि मेरी तरफ से उनके प्रति कौन सा कपट व्यवहार हुआ है, अथवा मैंने उनका क्या अपराध किया है जो वे मुझसे इस प्रकार रूठ गए। मैंने अपनी जान से अधिक भी उनकी आज्ञा मानने में भूल नहीं की है और सदैव उनके पीछे चलती रही हूँ। मैंने कभी बुरे एवं कटु वचन भी नहीं कहे, मैंने उनके समाज में प्रेम का निर्वाह उसी प्रकार किया जिस प्रकार कुमुदिनी चंद्रमा के साथ निर्वाह करती है। कोई विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ युवति, सुनो, तेरे प्रिय श्री कृष्ण पृथ्वी पर कामदेव के समान है। राजा शिव सिंह रूप नारायण भी लक्ष्मी देवी से रमण करने वाले हैं। विशेष मान नायक पक्षी है, नायिका को आतुरता का स्वभाव निरूपण हुआ है। अलंकार की हमें ससी में उपमा, साय साय कह कह में विपसा, कह कह करे में क वर्ण एक से अधिक बार आवृत्ति होने से प्रत्यानुप्रास, साम समाज में सवर्ण की एक बार आवृत्ति होने से छेकानुप्रास, साम समाज चंदा में दृष्टांत, मेदनी मदन समाने में उपमा। पद संख्या 52। माधव तुहे जनु आह विदेशे, हमरो रंग रभस लय जय, वह लह कौन संदेशे, पन्हे गमन कर होइति दोसर मति, बिसरी जैव पहु मोरा, हीरा मणि मणिक एको नहीं, मांगव फेरी मांगव पहु ओरा, एक ही नगर करु नयन नीर भरु, देखौ न भेल पहु तोरा, एक ही नगर बसि बहु भेल परवस, कैसे पुरत मन मोरा, बहुसंग कामनी बहुत सुहागिन, चंद्र निकट जैसे तारा, बने विद्यापति सुनबर जौपति, अपन हृदय धरु सारा। संदर्भ वियोग की व्यथा से आशंकित राधा सखी के द्वारा प्रीतम कृष्ण के पास संदेश भेजते हुए कहती है कि वे विदेश न जाएं, उनके विदेश जाने से तो उसकी सारी प्रसन्नता ही चली जाएगी। व्याख्या, हे माधव तुम विदेश न जाओ, यदि तुम यहाँ से चले गए तो हमारी प्रसन्नता राग रंग विलास आदि सभी कुछ तुम्हारे साथ ही चला जाएगा। विदेश से हमारे लिए तुम्हारा संदेशा कौन लाएगा, अथवा विदेश से लौटते हुए मेरे कौन सा उपहार लाओगे। विदेश जाने से मनुष्य की मति भी कुछ दूसरी हो जाती है। ये मेरे प्राणनाथ, तुम भी मुझे भुला दोगे, मैं तुमसे यह नहीं मांगती हूँ कि तुम विदेश से मेरे लिए हीरा मणिक माणिक आदि रत्न लाओ, मैं तो एकमात्र तुम्हारी वापसी ही मांगती हूँ। प्रीतम विदेश चले जाते हैं और लंबी अवधि तक लौट कर नहीं आते। योगिनी सखी से व्यथित होकर कहती है, जिस समय मेरे प्रीतम यहाँ से गए, मेरे नेत्रों में उस समय आंसू भर आए और मैं अपने प्रीतम को जी भर कर देख भी नहीं सकी। एक ही नगर में रहते हुए जब प्रीतम दूसरी के वशीभूत हो जाएंगे, तब मेरे मन को शांति किस प्रकार मिलेगी। ये सखी, प्रीतम के समीप रहने से कामिनी उसी प्रकार बहुत अधिक सुहागिन होती है जिस प्रकार चंद्रमा के निकट रहने से तारा सुशोभित होता है। विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ युवती, सुनो, तुम अपने हृदय में धैर्य धारण करो, प्रीतम के पुनः आगमन से तेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। विशेष इस पद को उदाहरण स्वरूप लेकर डॉक्टर जनार्दन मिश्र ने विद्यापति को अध्यात्मवादी बतलाया है, परंतु इसमें लौकिकता ही है। विप्रलम्ब श्रृंगार अलंकार, रंग रसब में रवण के एक बार आवृत्ति होने से छेकानुप्रास, बहुसंग तारा में दृष्टांत।